क्या होगा अगर किसी धर्म का, मतलब किसी भी आस्था का सबसे पवित्र नियम उसकी सबसे बड़ी कमजोरी बन जाए?
हाँ, ये अपने आप में एक बहुत ही अजीब विचार है,
है ना? जरा कल्पना कीजिए कि एक बहुत ही प्राचीन और कठोर व्यवस्था है, एक ऐसी व्यवस्था जिस पर पूरी दुनिया का एक बड़ा हिस्सा सदियों से अपनी आस्था टिकाए हुए है।
बिल्कुल, और उस व्यवस्था में सब कुछ बहुत ही सख्त है।
हाँ, और सब कुछ इस बात पर निर्भर करता है कि किसी व्यक्ति के खून के रिश्ते क्या हैं, उसकी वंशावली क्या है, और फिर अचानक से एक बहुत ही पुराने, लगभग भुला दिए गए पन्ने में एक ऐसा रहस्यमयी लूपहोल मिल जाता है
जो उस पूरी की पूरी व्यवस्था को ही जड़ से उखाड़ फेंकता है।
बिल्कुल, आज के हमारे इस गहन अध्ययन में हम बिल्कुल यही डिकोड करने जा रहे हैं। हमारी आज की ये चर्चा डॉक्टर डेविड ए डी सिल्वा के जो इब्रानियों यानी हिब्रू 7:1-13 पर आधारित नोट्स हैं उन पर केंद्रित है।
और ये नोट्स सच में बहुत गहराई में जाते हैं।
हाँ, तो हमारा आज का मिशन ये समझना है कि कैसे प्राचीन ग्रंथों ने ईश्वरीय जुड़ाव के विचार को पूरी तरह से बदल के रख दिया, मतलब कठोर वंशावली की जंजीरों से निकलकर एक अविनाशी जीवन की ओर।
सही कहा।
ये विषय इतना चौंकाने वाला है कि मुझे तो ये किसी थ्रिलर कहानी जैसा लगता है।
ये सचमुच इतिहास और धर्मशास्त्र का एक ऐसा मोड़ है जो किसी भी जिज्ञासु मन को सोचने पर मजबूर कर देता है। डॉक्टर डी सिल्वा के नोट्स हमें उस समय में ले जाते हैं जब प्राचीन यहूदी और शुरुआती ईसाई दुनिया में एक बहुत बड़ा वैचारिक भूकंप आ रहा था।
वैचारिक भूकंप, हाँ, ये बिल्कुल सही शब्द है इसके लिए।
मतलब इब्रानियों के लेखक एक बहुत ही जटिल लेकिन बेहद तार्किक तर्क प्रस्तुत कर रहे हैं। वे ये समझा रहे हैं कि ईश्वर तक पहुंचने का जो पारंपरिक तरीका था,
यानी मूसा की व्यवस्था और लेवी पुजारियों के माध्यम से जो होता था।
हाँ बिल्कुल, वो तरीका अब एक बिल्कुल नए और बहुत ही श्रेष्ठ तरीके से बदल दिया गया है। और मजेदार बात यह है कि ये पूरा का पूरा वैचारिक बदलाव एक बेहद रहस्यमयी व्यक्ति पर टिका है।
रहस्यमयी व्यक्ति?
हाँ, एक ऐसा व्यक्ति जिसका नाम प्राचीन ग्रंथों में अचानक से आता है और फिर बिना कोई सुराग छोड़े गायब हो जाता है।
अरे वाह, और इस नई ईश्वरीय व्यवस्था को समझने के लिए हमें सबसे पहले जेनेसिस अध्याय 14 के उसी रहस्यमयी व्यक्ति की ओर देखना ही होगा।
बिल्कुल,
इब्रानियों का 7वां अध्याय हमें मेल्किसेदेक की कहानी पर वापस ले जाता है। तो इनके नाम से ही शुरुआत करते हैं। मेल्किसेदेक का अर्थ है धार्मिकता का राजा और वे सालेम के राजा थे,
जिसका अर्थ है शांति का राजा।
हाँ, शांति का राजा। ये भी बहुत दिलचस्प है कि यशाया जैसे नबियों ने आने वाले मसीहा को शांति का राजकुमार ही कहा था।
ये एक बहुत ही गहरा कनेक्शन है।
लेकिन जो बात मुझे सबसे ज्यादा हैरान करती है वो ये है कि इस व्यक्ति का कोई पिता नहीं है, कोई माता नहीं है और कोई वंशावली दर्जी नहीं है।
यही तो सबसे बड़ा रहस्य है।
अब जो लोग प्राचीन इतिहास से बहुत ज्यादा परिचित नहीं है उनके लिए ये जानना जरूरी है कि उस समय यहूदी संस्कृति में खासकर लेवी पुजारियों के लिए वंशावली ही सब कुछ थी, है ना?
हाँ बिल्कुल, इज़रा और नहमाया के समय का इतिहास बताता है कि अगर कोई पुजारी अपनी वंशावली का रिकॉर्ड साबित नहीं कर पाता था तो उसे मंदिर की सेवा से पूरी तरह बाहर कर दिया जाता था।
मतलब बिना वंशावली के किसी का समाज में कोई वजूद ही नहीं था। तो इस सब का आखिर क्या मतलब है? ये तो कुछ ऐसा हुआ जैसे जैसे दुनिया की सबसे शक्तिशाली और महत्वपूर्ण नौकरी किसी ऐसे व्यक्ति को मिल जाए जिसके पास ना कोई रेज्यूमे है,
ना कोई बैकग्राउंड चेक हुआ है।
बिल्कुल, और ना ही कोई पारिवारिक सिफारिश है। वो केवल अपने शाश्वत गुणों के आधार पर उस पद पे बैठ गया हो।
यहाँ जो सबसे आकर्षक बात है वो ये है कि प्राचीन ग्रंथों की चुप्पी भी अपने आप में एक बहुत बड़ा प्रमाण बन जाती है।
चुप्पी, आप इसे थोड़ा और समझाएंगे?
मतलब जेनेसिस में मेल्किसेदेक की वंशावली, उनके जन्म या उनकी मृत्यु का कोई जिक्र नहीं है। अब इब्रानियों के लेखक इस चुप्पी को एक खामी नहीं मानते।
अच्छा।
हाँ, वे इसे एक विशेषता मानते हैं। वे तर्क देते हैं कि चूंकि मेल्किसेदेक का कोई आरंभ या अंत नहीं लिखा है, इसलिए वे ईश्वर के पुत्र के समान एक शाश्वत स्थिति को दर्शाते हैं।
ओह, समझ रही हूँ।
लेकिन इसका असली वजन तब समझ में आता है जब हम उस ऐतिहासिक घटना को देखते हैं जहां इब्राहिम, जो कि पूरे यहूदी राष्ट्र के पितामह हैं,
हाँ, वो सबसे बड़े माने जाते हैं।
बिल्कुल, वे एक बहुत बड़ा युद्ध जीतकर लौट रहे हैं। वे मेल्किसेदेक से मिलते हैं और अपनी जीती हुई लूट का 10वां हिस्सा, जिसे दशमांश या टाइथ कहा जाता है, उन्हें सौंप देते हैं।
ठीक है।
और बदले में मेल्किसेदेक इब्राहिम को आशीर्वाद देते हैं।
हाँ
अब प्राचीन दुनिया का एक बहुत ही स्पष्ट और अटूट नियम था,
वो क्या?
हमेशा छोटा व्यक्ति बड़े व्यक्ति से आशीर्वाद लेता है।
रुको एक मिनट,
जी
यहाँ मुझे एक बात खटक रही है।
क्या?
इब्राहिम तो ईश्वर के चुने हुए इंसान थे ना?
हाँ।
पूरे राष्ट्र के पितामह, वो किसी अजनबी राजा को जिसका जिसका कोई अता पता नहीं है अपनी लूट का हिस्सा क्यों देंगे?
हाँ।
और खुद को उससे छोटा क्यों मानेंगे?
हाँ, और यही तो इब्रानियों के लेखक का मास्टर स्ट्रोक है। तर्क ये है कि लेवी, जो इब्राहिम के ही परपोते थे,
हाँ
और जिनके नाम पर पूरी लेवी पुजारियों की व्यवस्था चली, वे उस समय प्रतीकात्मक रूप से इब्राहिम के शरीर के भीतर ही मौजूद थे।
मतलब जब इब्राहिम ने सिर झुकाया,
बिल्कुल, जब इब्राहिम ने मेल्किसेदेक को दशमांश दिया और उनके सामने सिर झुकाया, तो एक तरह से भविष्य के सभी लेवी पुजारियों ने भी उस शाश्वत पुजारी के सामने अपना सिर झुका लिया।
क्या बात है, ये तो बहुत ही गहरा तर्क है।
लेवी पुजारी अपने ही यहूदी भाइयों से कर लेते थे क्योंकि उनके पास वंशावली का कानूनी अधिकार था, लेकिन मेल्किसेदेक ने बिना किसी वंशावली के केवल अपनी शाश्वत श्रेष्ठता के कारण इब्राहिम से कर लिया।
तो ये साबित करता है कि मेल्किसेदेक का क्रम हारून और लेवी के पुजारियों की व्यवस्था से कहीं अधिक श्रेष्ठ
और पुराना और मौलिक है।
ठीक है, आइए इसे खोलकर समझते हैं। अगर मेल्किसेदेक की व्यवस्था इतनी ही श्रेष्ठ और मौलिक थी और लेवी व्यवस्था को अंततः बदलना ही था, तो वो पुरानी लेवी व्यवस्था इतने सालों तक मौजूद क्यों थी?
ये एक बहुत ही स्वाभाविक सवाल है।
मेरा मतलब है, अगर वो व्यवस्था खुद ईश्वर ने बनाई थी, तो क्या वो सिर्फ एक बीटा वर्जन था जो बाद में कमजोर और बेकार साबित हुआ? स्रोत सामग्री यहाँ बार बार पूर्णता या परफेक्शन की बात करती है, तो इसका क्या संदर्भ है?
अगर हम इसे बड़ी तस्वीर से जोड़ें, तो पूर्णता का अर्थ यहाँ केवल नैतिक रूप से अच्छा होना या गलतियां न करना नहीं है।
तो फिर क्या है?
प्राचीन संदर्भ में पूर्णता का बहुत ही गहरा अर्थ था। पूजा करने वालों के अंतःकरण, यानी उनके भीतर की चेतना को पूरी तरह से शुद्ध करना, ताकि वे बिना किसी डर, अपराधबोध या बाधा के सीधे ईश्वर की उपस्थिति में खड़े हो सकें।
अच्छा, तो पुरानी व्यवस्था ये नहीं कर पाती थी?
नहीं, लेवी व्यवस्था और मूसा का कानून लोगों को इस गहरे अर्थ में पूर्ण नहीं कर सकते थे।
मतलब वो पुरानी व्यवस्था एक तरह से बस एक बैंडेड की तरह काम कर रही थी।
हाँ बिल्कुल, एक बैंडेड की तरह,
जो घाव को ढक तो रही थी पर उसे अंदर से ठीक नहीं कर पा रही थी।
आपने बिल्कुल सही तरह से पकड़ा। वे पशु बलिदान केवल पापों को अस्थायी रूप से ढक सकते थे, लेकिन वे मानव हृदय और अंतःकरण को पूरी तरह से बदल नहीं सकते थे।
समझ रही हूँ।
इसीलिए लेखक भजन संहिता यानी साम 110:4 का एक बहुत ही महत्वपूर्ण संदर्भ देते हैं, जहाँ लिखा है, तुम मेल्किसेदेक के क्रम में हमेशा के लिए एक पुजारी हो।
हाँ,
ये कोई मामूली बात नहीं है। ये घोषणा लेवी व्यवस्था के स्थापित होने के सैकड़ों साल बाद राजा दाऊद के समय में की गई थी।
हाँ जाहिर है, अगर लेवी व्यवस्था पूरी तरह से परफेक्ट होती और काम कर रही होती, तो सैकड़ों साल बाद एक नई पुजारी व्यवस्था की भविष्यवाणी करने की जरूरत ही क्या थी? मतलब कोई चलती भी गाड़ी का इंजन क्यों बदलेगा?
बिल्कुल, और यहीं पर यिर्मयाह 31 में की गई नए अनुबंध या न्यू कोवेनेंट की भविष्यवाणी भी आकर जुड़ जाती है। पुरानी व्यवस्था और मूसा का कानून आपस में एक ही धागे से बुने हुए थे।
तो दोनों साथ साथ चलते थे?
हाँ, इसलिए पुजारियों के बदलने का सीधा सा मतलब था पूरे के पूरे कानून का बदल जाना।
अच्छा,
डॉक्टर डी सिल्वा के नोट्स बहुत स्पष्ट रूप से बताते हैं कि यीशु यहूदा के वंश से थे, लेवी के वंश से नहीं। मूसा के कानून में यहूदा के वंश से किसी के पुजारी बनने का कोई प्रावधान ही नहीं था।
हाँ, वो तो सिर्फ लेवी वंश के लिए था।
बिल्कुल, इसलिए जब ईश्वर की शपथ ने यीशु को मेल्किसेदेक के क्रम में पुजारी नियुक्त किया, तो इसका मतलब था कि वो पुराना कानून, जो इंसानों की वंशावली और कमजोर शारीरिक नियमों पर आधारित था, उसे एक ननी और हमेशा के लिए टिकने वाली व्यवस्था से रिप्लेस कर दिया गया।
यहाँ से ये बात वास्तव में दिलचस्प हो जाती है। कानून बदल गया, पुरानी व्यवस्था हट गई, लेकिन इस नए और बेहतर अनुबंध की गारंटी कौन लेगा?
हाँ, ये ही सबसे बड़ा सवाल था उस समय।
स्रोत बताते हैं कि यीशु इस नए अनुबंध के गारंटर हैं, और उनकी ये नियुक्ति किसी शारीरिक नियम या खून के रिश्ते पर आधारित नहीं है, बल्कि अविनाशी जीवन की शक्ति पर आधारित है,
यानी उनका पुनरुत्थान या रेजरेक्शन।
बिल्कुल, मुझे हमेशा से ये हैरानी होती थी कि लोग पुरानी व्यवस्था से इतने निराश क्यों थे, लेकिन जब मैंने नोट्स में 175 ईसा पूर्व के जेसन, मेनेलॉस और अल्सीमस जैसे पुजारियों के बारे में पढ़ा, तो समझ में आया।
हाँ, उन लोगों का इतिहास बहुत ही उथल पुथल भरा रहा है।
इन लोगों को हेलेनाइजिंग पुजारी कहा जाता था, और जो लोग नहीं जानते उनके लिए बता दूं कि हेलेनाइजिंग का मतलब था अपनी यहूदी संस्कृति और धर्म को छोड़कर ग्रीक संस्कृति को अपनाना, ताकि सत्ता में बैठे ग्रीक राजाओं को खुश किया जा सके।
और ये केवल संस्कृति अपनाने का सीमित नहीं था।
अच्छा, और क्या किया था इन्होंने?
इन पुजारियों ने बाकायदा ग्रीक राजा एंटियोकस को भारी रिश्वत देकर महायाजक या हाई प्रीस्ट का पद खरीदा था। मिनेलॉस ने तो जेसन से भी ज्यादा रिश्वत देकर उसे पद से हटवा दिया था।
बाप रे।
हाँ, उन्होंने यरूशलेम के मंदिर की पवित्रता को बिल्कुल बाजारू बना दिया था।
इस पूरी बात को अगर आज की दुनिया से जोड़कर देखें तो ये एक खराब वाईफाई राउटर जैसा है।
वाईफाई राउटर?
हाँ, मतलब आप उस राउटर पर पूरी तरह निर्भर हैं, लेकिन आपको पता ही नहीं होता कि कब सिग्नल चला जाएगा, क्योंकि वो मशीन ही खराब है।
अरे हाँ, ये बहुत अच्छी तुलना है।
उस समय के आम लोगों में हमेशा ये डर बना रहता होगा कि उनका ईश्वर के साथ जो कनेक्शन है वो कभी भी टूट सकता है, क्योंकि उनका पुजारी भ्रष्ट हो चुका है, या फिर वो एक इंसान है इसलिए एक दिन मर जाएगा।
बिल्कुल।
इसके अलावा उन पुराने पुजारियों को लोगों के पापों के लिए बलिदान देने से पहले अपने खुद के पापों के लिए भी तो बलिदान देना पड़ता था।
आपका ये इंटरनेट कनेक्शन वाला नजरिया उस समय की हताशा को बहुत अच्छे से समझाता है। प्राचीन यहूदी साहित्य में एक ग्रंथ है, टेस्टमेंट ऑफ लिवी, जो उस दौर की इस गहरी चिंता और घबराहट को दर्शाता है।
तो लोग सच में डरे हुए थे?
बहुत ज्यादा। लोग लगातार बदलते, भ्रष्ट होते और मरते हुए पुजारियों से पूरी तरह थक चुके थे। वे एक ऐसे अमर और सच्चे मध्यस्थ के लिए तरस रहे थे जो हमेशा के लिए टिक सके,
जिसका कोई उत्तराधिकारी ना हो।
हाँ, क्योंकि वो कभी मरेगा ही नहीं। इब्रानियों के लेखक इसी पृष्ठभूमि का इस्तेमाल करते हुए कहते हैं कि यीशु एक अमर और स्थायी फाइबर ऑप्टिक कनेक्शन की तरह हैं।
फाइबर ऑप्टिक? हाँ बिल्कुल।
वे पवित्र हैं, पापियों से अलग हैं, फिर भी मानव कमजोरियों के प्रति पूरी सहानुभूति रखते हैं, क्योंकि उन्होंने इंसानी जीवन का अनुभव किया है।
सही कहा।
चूंकि उनका जीवन अविनाशी है, इसलिए वे हमेशा लोगों की मध्यस्थता करने के लिए जीवित हैं।
हाँ।
उन्हें अपने लिए किसी बलिदान की आवश्यकता नहीं है।
हाँ।
और उनका एक ही बलिदान उस पुरानी बार बार दोहराई जाने वाली व्यवस्था से कहीं अधिक श्रेष्ठ है।
लेकिन यहाँ मुझे एक बहुत बड़ी वैचारिक उलझन हो रही है।
कैसी उलझन?
मतलब हम ये समझ गए कि एक अमर मध्यस्थ आ गया जिसने स्वयं का बलिदान दिया, और वो पुराने पुजारियों से बेहतर है, लेकिन ये विचार आया कहाँ से कि एक व्यक्ति का मरना दूसरों के पापों का प्रायश्चित कर सकता है?
ये सच में एक बहुत बड़ा सवाल है।
जहाँ तक मुझे पता है तो तोरा या मूसा का कानून तो मानव बलि के सख्त खिलाफ है। इसे ईश्वर की नज़र में एक घृणित कार्य माना गया है। तो फिर शुरुआती ईसाइयों ने ये कैसे मान लिया कि यीशु की मृत्यु ने पूरी दुनिया के पापों को धो दिया? ये छलांग कैसे लगी?
ये एक महत्वपूर्ण सवाल खड़ा करता है, क्योंकि यह विचार रातों रात आसमान से नहीं टपका। डॉक्टर डी सिल्वा के अनुसार, इतिहास के सबसे गहरे वैचारिक विकासों में से एक सेकंड टेंपल यहूदी धर्म के दौरान हुआ।
सेकंड टेंपल यहूदी धर्म, ये कौन सा समय था?
ये वो समय था जब यहूदी लोग निर्वासन से लौट चुके थे, लेकिन वे लगातार ग्रीक और रोमन साम्राज्यों के अधीन थे। इस वैचारिक विकास के पीछे दो मुख्य आधार थे।
अच्छा, वो क्या थे?
पहला था लेव्या व्यवस्था, यानी लेविटिकस 17:11, जो कहता है कि मांस का जीवन रक्त में है, और रक्त ही जीवन के बदले प्रायश्चित करता है।
ठीक है, खून से प्रायश्चित। और दूसरा?
और दूसरा आधार व्यवस्था विवरण, यानी ड्यूटरोनोमी की वो धारणा थी जिसमें कहा गया था कि ईश्वर के प्रति चरम आज्ञाकारिता से राष्ट्र पर आए अभिशाप को पलटा जा सकता है।
तो मतलब एक तरफ ये विचार है कि रक्त में जीवन है जो प्रायश्चित करता है, और दूसरी तरफ ये विचार है कि अटूट आज्ञाकारिता से श्राप टूटता है।
बिल्कुल।
ये कुछ कुछ ऐसा है जैसे जैसे किसी देश पर बहुत बड़ा चुकाया ना जा सकने वाला भारी कर्ज हो, और उस देश को बचाने के लिए अब पैसों की नहीं बल्कि कुछ गिने चुने नागरिकों की अटूट वफादारी और अपने प्राणों के बलिदान की आवश्यकता हो जो पूरे देश के कर्ज को माफ करवा दे।
हाँ, और ये केवल एक विचार नहीं था, बल्कि उन्होंने इसे अपने सामने घटित होते हुए देखा था।
सच में? कब?
विशेष रूप से मकाबीज के शहीदों की कहानी में, 168 से 166 ईसा पूर्व के आसपास उसी सीरिया ग्रीक राजा एंटियोकस चतुर्थ ने यरूशलम पर एक भयंकर उत्पीड़न शुरू किया।
उसने यहूदी धर्म का पालन करने को ही गैरकानूनी घोषित कर दिया।
ओह, तो ये बहुत ही भयानक समय रहा होगा।
बहुत ज्यादा। उस समय यहूदियों को एक भयानक विकल्प दिया गया, या तो सुअर का मांस खाकर ग्रीक कानूनों को स्वीकार कर लो, या फिर भयानक यातनाएं सहकर मर जाओ।
सुअर का मांस खाना उनके लिए सिर्फ डाइट का मामला नहीं था, है ना? वो ईश्वर के साथ उनके अनुबंध को तोड़ने के बराबर था। बिल्कुल, वो उनकी पहचान और उनके विश्वास का केंद्र था। 2 और 4 मकाबीस की किताबों में एलाजार नामक एक 90 वर्षीय बूढ़े पुजारी और एक माँ और उसके 7 बेटों की रोंगटे खड़े कर देने वाली कहानियाँ हैं।
रोंगटे खड़े कर देने वाली, मतलब उन्होंने क्या किया?
उन्होंने सुअर का मांस खाने के बजाय कोड़ों से पीटे जाने और जलाए जाने की मौत चुनी।
तो क्या उन्होंने इसे केवल एक दुखद मौत या हार माना?
नहीं, यही पर वो वैचारिक बदलाव आता है। 4 मकाबीस में एलाजार यातना सहते हुए ईश्वर से प्रार्थना करता है कि मेरे रक्त को उनकी शुद्धि बना दे और मेरे जीवन को उनके जीवन के बदले ले ले।
बाप रे, ये तो बहुत ही गहरी बात है।
हाँ, उन शहीदों ने जो भयानक मौत चुनी उसे ईश्वर के प्रति उनकी चरम आज्ञाकारिता का प्रतीक माना गया। उस समय के यहूदी विचारकों ने ये निष्कर्ष निकाला कि इन शहीदों की इस अटूट वफादारी और उनके निर्दोष खून ने ईश्वर के क्रोध को शांत किया और पूरे देश को शुद्ध किया।
तो उनके बलिदान ने एक तरह से पूरे राष्ट्र के लिए फिरौती का काम किया।
बिल्कुल, एकदम सही।
ये बहुत ही शक्तिशाली विचार है। मतलब उन शहीदों ने मानव बलि नहीं दी थी, बल्कि उन्होंने एक उत्पीड़क राजा के सामने झुकने के बजाय जान देना सही समझा, जो एक तरह का शहीद धर्मशास्त्र या मार्टर थियोलॉजी बन गया।
हाँ, और यहूदी धर्मशास्त्रियों ने इस घटना को यशाया अध्याय 53 के कष्ट सहने वाले सेवक या सफरिंग सर्वेंट के भविष्यवाणी से भी जोड़ दिया।
उसमें क्या भविष्यवाणी थी?
यशाया में एक ऐसे निर्दोष व्यक्ति का वर्णन है जो दूसरों के पापों और अपराधों के लिए दुख उठाता है और मारा जाता है ताकि दूसरों को शांति मिल सके।
अच्छा।
इन सभी विचारों, लेविटिकस का रक्त का सिद्धांत, ड्यूटोनॉमी की आज्ञाकारिता, मकाबीस के शहीदों का साहसिक बलिदान और यशाया का कष्ट सहने वाला सेवक, इन सबने मिलकर एक पूरा ढांचा तैयार कर दिया था।
और अब मुझे समझ आ रहा है।
क्या?
इसी ढांचे ने शुरुआती ईसाइयों को यीशु की मृत्यु को समझने का लेंस दिया। उन्होंने यीशु की क्रूस पर मृत्यु को रोमनों द्वारा की गई केवल एक दर्दनाक हत्या या एक भयानक त्रासदी के रूप में नहीं देखा।
बिल्कुल नहीं।
उन्होंने इसे एक स्वैच्छिक, महान और अंतिम प्रायश्चित के रूप में समझा। यीशु वो अंतिम कष्ट सहने वाले सेवक थे जिनकी ईश्वर के प्रति अटूट आज्ञाकारिता ने उस अभिशाप को हमेशा के लिए पलट दिया और मानवता के लिए पूर्णता का मार्ग खोल दिया।
एकदम। इब्रानियों के लेखक इसी गहरी ऐतिहासिक और वैचारिक पृष्ठभूमि का उपयोग करके ये साबित करते हैं कि यीशु का ये एक बार का बलिदान उन लेवी पुजारियों के रोजाना के पशु बलिदानों से अनंत गुना बड़ा है,
क्योंकि वो तो रोज करने पड़ते थे।
हाँ, लेवी पुजारियों को हर दिन हर साल बलिदान दोहराने पड़ते थे, क्योंकि वे बलिदान कभी भी इंसानी अंतःकरण को, हमारे भीतर की चेतना को पूरी तरह शुद्ध नहीं कर सकते थे। लेकिन यीशु, जो मेल्किसिद्धिक के क्रम में एक अविनाशी और शाश्वत पुजारी हैं, उन्होंने एक ऐसा पूर्ण बलिदान दिया जिसने हमेशा के लिए रास्ता खोल दिया।
अब किसी और बलिदान की आवश्यकता नहीं है।
बिल्कुल, किसी और बलिदान की कोई जरूरत नहीं है।
तो अगर हम सुनने वालों के लिए इस पूरी चर्चा को समेटें, तो हमने आज एक बहुत ही लंबी यात्रा तय की है।
हाँ, बहुत सी चीजों पर बात की हमने।
हमने देखा कि कैसे प्राचीन दुनिया वंशावली और खून के रिश्तों के सख्त जुनून में जकड़ी हुई थी। लेवी पुजारियों का पूरा ढांचा इस बात पर निर्भर था कि आप किसके परिवार में पैदा हुए हैं। लेकिन फिर मेल्किसिदेक का वो रहस्यमयी सिद्धांत सामने आता है जो इस पूरी व्यवस्था को एक झटके में बदल देता है
और एक नया रास्ता खोलता है।
हाँ, एक ऐसा मध्यस्थ उभरता है जिसका आधार कोई वंशावली या रेज्यूमे नहीं, बल्कि एक अविनाशी जीवन, अटूट आज्ञाकारिता और मनुष्यों को पूर्णता तक ले जाने की क्षमता है। यीशु के रूप में एक ऐसे शाश्वत पुजारी की अवधारणा सामने आई जिसने पुरानी कमजोर व्यवस्था की जगह एक नया और बेहतर अनुबंध स्थापित किया।
और ये वैचारिक यात्रा हमें केवल प्राचीन इतिहास के पन्नों में ही नहीं छोड़ देती।
आपका क्या मतलब है?
अगर हम इसे गहराई से देखें तो ये मानव स्वभाव को समझने का एक बहुत बड़ा झरोखा भी है। ये हमें दिखाती है कि कैसे प्राचीन लोग एक ऐसी व्यवस्था की सीमाओं से जूझ रहे थे जो इंसानी कमजोरियों पर निर्भर थी,
जो कि बहुत ही स्वाभाविक है।
हाँ, वे भ्रष्ट नेताओं और टूटते नियमों से परेशान थे। वे एक ऐसे मध्यस्थ की लालसा कर रहे थे जो कभी विफल ना हो, जो कभी भ्रष्ट ना हो, जो उनके और उस परम सत्य के बीच एक अटूट पुल बन सके।
बिल्कुल, और सुनने वालों को इस पर विचार करना चाहिए कि ये सारी ऐतिहासिक जानकारी उनके लिए आज क्यों मायने रखती है।
हाँ, आज के संदर्भ में भी ये बहुत जरूरी है।
आज हम जानकारी और तकनीक के युग में जी रहे हैं, लेकिन अगर हम ध्यान दें तो आज भी हर दिन हमारे सामने कोई ना कोई मानव निर्मित संस्था, कोई ना कोई कानूनी व्यवस्था या कोई बड़ा नेता विफल हो रहा है।
बिल्कुल सही बात है।
इतिहास में एक त्रुटिहीन और स्थायी मध्यस्थ की ये गहरी लालसा हमें हमारी अपनी आध्यात्मिक और मनोवैज्ञानिक जरूरतों के बारे में बहुत कुछ बताती है। इंसान हमेशा से कुछ ऐसा चाहता है जो इस नश्वर दुनिया से परे हो, जिस पर वो आंख बंद करके भरोसा कर सके, जो कभी राउटर के सिग्नल की तरह गायब न हो जाए।
ये एक बहुत ही प्रासंगिक सोच है। इंसानी कमजोरियों, लालच और मृत्यु से बनी कोई भी व्यवस्था कभी भी हमें वो पूर्ण सुरक्षा या पूर्ण शांति नहीं दे सकती जिसकी हम भीतर से तलाश कर रहे होते हैं।
सही कहा।
इब्रानियों का लेखक अपने समय के लोगों को यही समझा रहा था कि जिस शाश्वत मध्यस्थ की ओर वे देख रहे हैं वो उन पुरानी टूटने वाली और भ्रष्ट व्यवस्थाओं से कहीं अधिक महान और सुरक्षित है।
तो आज के इस गहन विश्लेषण को समाप्त करते हुए मैं सुनने वालों के मन में एक विचार छोड़ के जाना चाहूंगी। हमने देखा कि कैसे प्राचीन लोगों ने अपने समय के भ्रष्ट पुजारियों और टूटती व्यवस्थाओं से तंग आकर मकाबीज के शहीदों के दर्द से गुजरकर अंततः एक ऐसे मध्यस्थ में शांति पाई जो मानवीय कमियों और मृत्यु से परे था।
एक अमर मध्यस्थ।
हाँ, तो जरा सोचिए आज के समय में हम किस चीज पर निर्भर हैं, जब हमारे आसपास की आर्थिक, राजनीतिक या सामाजिक व्यवस्थाएं विफल होती हैं, तो क्या हम आज भी कृत्रिम बुद्धिमत्ता जैसे तकनीकी चमत्कारों में या अपने राजनेताओं में एक नए मेल्किसेदेक को खोजने की कोशिश नहीं कर रहे हैं?
ये बहुत ही गहरा सवाल है।
क्या हम आज भी किसी ऐसे अचूक तारणहार या सिस्टम की तलाश में नहीं है जो हमें हमारी अपनी ही कमियों और इस दुनिया की उथल पुथल से बचा सकें? यह इतिहास केवल अतीत नहीं है, यह हमारी आज की खोज का आईना है। इस पर जरूर विचार कीजिएगा। अगली बार तक के लिए जिज्ञासु बने रहिए और सीखते रहिए।